सभी प्रेम से बोले ओम शांति। सबसे पहले मैं मंचासीन मेहमानों को निमंत्रण देती हूँ मंच पर आने के लिए। माननीय भ्राता डॉक्टर डी रविशंकर जी, मिसेस प्रियंका डामोर जी, ब्रह्मा कुमारी नेहा बहन, आप सबका मंच पे हार्दिक स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। और हम सब भी मंचासीन मेहमानों का तालियों के द्वारा खूब खूब दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारी भारतीय प्रणाली के अनुसार कोई भी अच्छे कार्य की शुरुआत परमात्मा की याद से करते हैं। सबसे पहले हम कुछ क्षणों के लिए परमात्मा को याद करेंगे। जो पीछे बैठे हैं, आगे पहली लाइन में जगह है, आप आगे आ सकते हैं। अब मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ, मंचस्थ मेहमानों का फूलों से और बेज से स्वागत करेंगे ब्रह्मा कुमारी बहनें। साथ साथ हम सब भी तालियों के द्वारा मेहमानों का स्वागत करते रहेंगे। हमारी आज की सभा के चेयरपर्सन डॉक्टर डी रविशंकर जी, आपका भी स्वागत है। मिसेस ब्रह्मा कुमारी, मिसेस प्रियंका डामोर, आपका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। ब्रह्मा कुमारी नेहा बहन, आप चंडीगढ़ से पधारे हैं, आपका भी बहुत दिल से स्वागत है। अब ज्यादा समय न लेते हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा विषय है हेल्थ थ्रू हील ढाई लाइफस्टाइल। तंदुरुस्ती हर एक को चाहिए कि नहीं चाहिए? हर कोई तंदुरुस्त रहना चाहता है। कौन कौन चाहते हैं? सब चाहते हैं। और कौन कौन तंदुरुस्त हैं? सब तंदुरुस्त भी हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त। यहाँ आके ओके हो गए या ओके होके ही आए हैं? यहाँ आके ओके हो गए, बहुत अच्छा। अपने लिए तालियां बजाइए। एक दिन में आप सब यहां आकर तंदुरुस्त हो गए। तंदुरुस्ती क्या है? तंदुरुस्ती कहां से मिलती है? हील, स्वयं को हील करना है। तो परमात्मा ने बहुत सरल रास्ता बताया है, भगवान की याद से एनर्जी अर्थात ऊर्जा लेकर अपनी आत्मा में वो बल भर के अपने मन से ब्रेन के द्वारा सारे शरीर में उस ऊर्जा को फैलाकर अपने शरीर को हील करना। हीलिंग कभी भी बाहर से नहीं होता है, हीलिंग प्रोसेस अंदर से होती है। हम किसी को कहें तुम हील कर दो, वो पॉसिबल ही नहीं है। हीलिंग अंदर से तब होगा जब हमारा कनेक्शन परमात्मा से होगा। और कल सुबह का 7 बजे का जो सेशन है, 7 से 8:30, वो परमात्मा का संपूर्ण परिचय आपको प्राप्त होगा। 6:30 से 8 तक का, उसमें ये सारी बातें आपको सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी कि परमात्मा कौन है, उन्हें कैसे याद किया जाए। तो इसके द्वारा हम हीलिंग प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। सिर्फ यहाँ आए हैं इतने ही नहीं, आप इतने इन बातों को समझ के अनेकों तक ये संदेश पहुंचाएंगे और सारा भारत तो क्या, सारा विश्व तंदुरुस्त बन जाएगा। क्या आप सब चाहते हैं सब तंदुरुस्त हो? ऐसा तो नहीं सोचते कि फिर डॉक्टरों का क्या होगा? हेल्दी बनना, तंदुरुस्त बनना वो बहुत अच्छी बात है। हम तंदुरुस्त रहेंगे तो भगवान को और अच्छी तरह याद कर सकेंगे। एक छोटी सी बात बता रही हूं। एक बहन, उसको बुखार आया, थोड़ा था। 4-5 लोगों ने पूछा बुखार है, बुखार है, तो वो भी सोचने लगी मुझे बुखार है, मुझे बुखार है, मुझे बुखार है। शाम तक बुखार बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। ये हीलिंग प्रोसेस नहीं है। हीलिंग माना मुझे बुखार है, ये सच है। मेडिसिन की आवश्यकता है, ये भी सच है। लेकिन परमात्मा से शक्ति लेकर के हम स्वयं की आत्मा के अंदर शक्ति भरे, मेरा बुखार अब ठीक हो रहा है परमात्मा शक्ति से, तो इस प्रकार धीरे 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 हीलिंग की शुरुआत होती है। नकारात्मक विचार कभी हीलिंग नहीं करेंगे, पॉजिटिव सकारात्मक विचारों की आवश्यकता है। ज्यादा समय न लेते हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम निमंत्रण देते हैं ब्रह्मा कुमारी नेहाबेन को। ब्रह्मा कुमारी नेहाबेन राजयोग और स्ट्रेस मैनेजमेंट के टीचर हैं। वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फैकल्टी के सक्रिय मेंबर हैं। सन 1981 में एक आध्यात्मिक परिवार में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही वो आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके MNC के साथ जुड़ी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर सेवाएं दी। 4 साल तक एक सफल कैरियर के बाद एक मजबूत आंतरिक आवाज ने उन्हें 24 साल की छोटी उम्र में भौतिकवादी दुनिया का त्याग करने के लिए प्रेरित किया। मानव जीवन की गुणवत्ता के उत्थान और सार्वभौमिक शांति के लिए काम करने का निर्णय लिया। सभी राष्ट्रीयता, धर्मों, संप्रदाय, पंथों और जातीय के लोगों को समान मानते हुए आध्यात्मिकता के माध्यम से खुशियां फैलाई। आपने बचपन के दौरान, नेहा बहन आपके माता पिता के साथ नियमित रूप से ब्रह्मा कुमारी परिसर में जाती थी और संगठन के मौलिक दर्शन ने उनके दिमाग पर पहले से ही प्रभाव डाला था। उन्होंने सार्वभौमिक मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया और वर्ष 2005 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ गई। वह राजयोग ध्यान की एक धन्य और पारंगत व्याख्या और शिक्षिका हैं। वह जीवन के सभी उम्र और क्षेत्रों के लिए अत्यंत माननीय रुचि से विभिन्न विषयों को पढ़ाने में अपनी राजयोग विशेषता का मिश्रण करती हैं, जैसे तनाव प्रबंधन, मन प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास, सकारात्मक सोच की कला, नेतृत्व गुण और दृष्टिकोण, टीम निर्माण प्रेरणा, क्रोध और व्यवहार पर काबू पाना, ध्यान और विश्राम तकनीकि आदि। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, उद्योग, युवा और वृक्षों, शिक्षार्थियों और विद्वानों के लिए विभिन्न वार्ता प्रसिद्धि भी की है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, बैंक और विभिन्न संस्थाओं में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनका परिचय ही इतना अच्छा श्रेष्ठ है, तो हम उनके मुखों से ही अब सुनेंगे। ब्रह्मा कुमारी नेहा बेन,
एक बार सारे मुस्कुरा के बोलेंगे ओम शांति, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? दीदी पूछ रहे थे ना अभी, सभी हेल्दी हैं या नहीं हैं? तो अच्छा लग रहा था सुनकर कि आप सभी यहाँ आकर पहले से तो हेल्दी थे ही और ज्यादा हेल्दी महसूस कर रहे हैं। जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम तीन एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, एक अच्छी डाइट, दूसरा प्रॉपर रेस्ट और तीसरी चीज एक्सरसाइज। एग्री करते हैं आप सभी? अगर इन तीन एस्पेक्ट्स में से भी एक भी एस्पेक्ट मिसिंग होता है, एक भी चीज मिसिंग है, तो विल वी से आर सेल्फ हेल्दी? अगर किसी की बहुत अच्छी डाइट है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी करते हैं बट प्रॉपर रेस्ट नहीं है, तो भी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। एक्सरसाइज करते हैं, रेस्ट भी ले रहे हैं, लेकिन अगर डाइट न्यूट्रिशियस नहीं है तो भी हेल्दी नहीं है। मतलब तीनों चीजें जब बैलेंस्ड हैं तभी हम प्रॉपर हेल्थ बोलते हैं, राइट? अब अगर हम बात करें हेल्दी रहने की, तो जब थोड़ी सी हेल्थ ऊपर नीचे होती है तो नॉर्मली हम कहते हैं ना ये डिजीज है, इस डिजीज के कारण हम हेल्दी नहीं हैं। तो डिजीज वर्ड को ही जब आप पकड़ते हैं तो उसको अगर आप तोड़ें तो डिस ईज, दो वर्ड से बना है डिजीज, डिस ईज। व्हाट इट मींस कि जब हमारा मन इजी नहीं है तो शरीर में बीमारी आती है, राइट? आज डॉक्टर्स भी क्या कह रहे हैं, 99% डिजीज आर साइकोसोमेटिक, समवेयर योर माइंड इज अपसेट। यहां तक कि एक आपको कॉमन कोल्ड भी हुआ है, सिंपल खांसी जुकाम भी हुआ है, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मन परेशान है, ये मेडिकल साइंस बोल रही है आज। तो इसका मतलब जो रूट कॉज है, जैसे दीदी कह रहे थे कि हीलिंग अंदर से शुरू होती है, तो बीमारी भी कहां से शुरू हो रही है? यहां से शुरू हो रही है, मन से शुरू हो रही है। तो हमारी हेल्थ में पहली चीज है पॉजिटिव थॉट्स। जैसे शरीर के लिए न्यूट्रिशियस डाइट जरूरी है, ऐसी मन के लिए फूड फॉर द माइंड इज पॉजिटिव थॉट्स। अगर हम उस डाइट की बात करें तो आज हम बहुत ध्यान रखते हैं अपनी डाइट का कि हमारे डाइट में सारे मिनरल्स भी हों, सारे विटामिन्स भी हों, सारे चीजें हों। लेकिन इस विद्यालय में जो बहुत अच्छी बात सिखाई जाती है, आपकी डाइट सात्विक डाइट हो। आप में से कितने भाई बहने हैं जिनकी डाइट सात्विक है? मोस्ट 50% है। क्यों सात्विक डाइट चाहिए? क्योंकि सात्विक मन के लिए सात्विक अन्न चाहिए। कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन। जितना हम सात्विक आहार लेते हैं उतना हमारा मन शांत रहता है, उतना हमारा मन हेल्दी रहता है। आज हम प्रोटीन के नाम पर कितना अत्याचार कर रहे हैं, आप सोचिए। अपने टेस्ट के लिए हम किसी की जान ले रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? और उसको हम बहुत अच्छे से जस्टिफाई करते हैं कि रिच प्रोटीन डाइट शरीर की रिक्वायरमेंट है। आज हमें नेचर ने इतना कुछ दिया है, बहुत सारे नेचुरल सोर्स हैं जहां से आपकी डाइट का हर इंग्रेडिएंट पूरा होता है। एक जानवर को जब कैप्टिविटी में रखा जाता है तो उसके मन के भाव क्या होते होंगे, विचार कीजिए इस बात पर। किसी को भी कैप्टिविटी में रखा है और अगले दिन उसको पता है कि मुझे स्लॉटर किया जाना है, तो उसके मन के भाव क्या होते होंगे, किस तरह के थॉट्स होते होंगे? एंगर के, एग्रेशन के, फियर के। वही हॉर्मोन्स उसकी बॉडी में सिक्रीट हो रहे हैं और उसी एनर्जी को जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो सेम एनर्जी हम ले रहे हैं। आप एग्री करते हैं कि अगर हम इस तरह की डाइट लेंगे तो ये एंगर, एग्रेशन, फियर, ये चीजें, वॉयलेंस हमारे अंदर बढ़ेंगी, ये थॉट्स हमारे अंदर बढ़ेंगे। इसीलिए जितना आप सात्विक आहार लेंगे उतना आप तन से भी तंदुरुस्त रहेंगे और मन से भी तंदुरुस्त रहेंगे। दूसरी बात, आजकल के जीवन का हर एक का एक ट्रेंड हो गया है ना, बाहर का खाना, बाहर का खाना। पहले लोग होता था कभी जाते थे, कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, आज तो लोग घर पे बनाना पसंद ही नहीं करते हैं, या वीकेंड पे तो बाहर ही खाना है। आप देखिए, तीन क्वालिटी का खाना है। एक है जो मंदिर गुरुद्वारे में आप खा के आते हैं या किसी भी रिलीजियस प्लेसेस पर, जब वही भोजन सेम चीज या वही प्रसाद जिसको आप बोलते हो आप घर पर आके बनाते हैं, उसमें 10 मेवे डाल के भी बना लें, क्या वो स्वाद आता है आपको? क्या बोलते हैं हम, पता नहीं, वो स्वाद नहीं आया है। क्यों नहीं आया वो स्वाद? क्योंकि वो हाईएस्ट एनर्जी फूड है, इसीलिए हम उसको प्रसाद बोलते हैं। जब बन रहा है तो बनाने वाले के मन में क्या विचार चल रहे हैं, प्रसाद बन रहा है, भगवान को भोग लगना है, इन थॉट से बना है। और उसके बाद विधिवत उसको भोग लगाया जाता है, भगवान को ऑफर किया जाता है। और खाते समय भी हम कैसे खाते हैं, प्रसाद है, प्रसाद है, दोनों हाथों से लेंगे, थोड़ा सा गिरेगा तो उसको भी बड़े प्यार से उठा के लोग आंखों पर लगाते हैं। ये पहली क्वालिटी का फूड है, हाईएस्ट एनर्जी फूड। दूसरी क्वालिटी का फूड है जो हम घर पर बनाते हैं, अगर अपने हाथ से बनाते हैं। जब बहनें माताएं बनाती हैं तो मन में क्या थॉट है, परिवार वालों के लिए है, है ना, मेरे बच्चे के लिए, मेरे पति के लिए है, मेरे इसके लिए है, तो उसमें भी फिर भी प्यार की भावना है, ये सेकंड एनर्जी थॉट। और जो थर्ड है, लोएस्ट एनर्जी फूड, जब बाहर बन रहा है, होटल्स में बन रहा है, रेस्टोरेंट्स में बन रहा है, ढाबों में बन रहा है, वो तो सिर्फ पैसा कमाने के संकल्प से, जस्ट टू अर्न द मनी। तो आप सोचिए, उसको खाकर हम भी सारा दिन पैसा पैसा ही कर रहे होते हैं फिर। इसीलिए ये चीज यहां से सीख कर जाएं, आप सारे काम अपनी मेड से करवाएं, शॉपिंग तक करवाएं, खाना अपने हाथ से बनाएं, अपने परिवार के लिए बनाएं। खाना भी एक बहुत बड़ा रिचुअल है, उसको विधिवत बनाएं। और अगर मन में कुछ चल रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो अपने ऊपर रहम करें। प्लीज डोंट गो टू योर किचन, सिट विद योर सेल्फ, रिजॉल्व दैट इश्यू एंड देन गो बैक टू योर किचन। नहीं तो नहीं बनाएं, नहीं तो एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट आप मिक्स करने वाले हैं। इसीलिए भगवान की याद में बनाएं, प्यार से भोजन बनाएं। और खाते समय भी, कई बार हम टीवी देखते हुए खा रहे हैं, मोबाइल पे बात करते हुए खा रहे हैं, कुछ पढ़ते हुए खा रहे हैं, तो जो भी देख रहे हैं, जिस क्वालिटी का देख पढ़ सुन रहे हैं, वो सारी एनर्जी हम खाने के साथ अंदर डाल रहे हैं। तो अपने ऊपर रहम करें, खाना खाते समय परमात्मा को याद करके, उसकी शक्ति भर के, उस निराकार की पवित्रता की किरणें भोजन में जा रही हैं, उसकी शांति की किरणें भोजन में जा रही हैं, उसके सुख की किरणें भोजन में जा रही हैं। ये भोजन मेरे शरीर को हील कर रहा है, मेरे एक एक सेल को शांति खुशी से चार्ज कर रहा है। इन थॉट्स के साथ खाएंगे तो आपका हर मील ही प्रसाद बन जाएगा। ऐसे जब आप पानी पीते हैं, पानी को भी आप संकल्प देके पिएं। जिस भी कंटेनर में आप पानी पी रहे हैं, ग्लास में पी रहे हैं, बॉटल में पी रहे हैं, पीने से 30 सेकंड्स पहले जस्ट उसको थॉट दें कि परमात्मा की शांति सुख प्यार की किरणें उसमें आ रही हैं। ये पानी मेरे शरीर के एक एक कण को हील कर रहा है। या जो थॉट आप चाहते हैं वो भी उसमें डाल सकते हैं। तो हर पानी का कंटेनर अमृत बन जाएगा। तो एक लाइफस्टाइल चेंज ये जरूर आप यहां से सीख के जाइए, क्योंकि अन्न का डायरेक्ट हमारे मन पर इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। ये है हमारी नॉर्मल डाइट की बात। और जब हम मन की डाइट की बात करते हैं तो वो बात है पॉजिटिव थॉट्स की। अब अगर मैं आपको कहूं कि एक मिनट के लिए जस्ट अपने मन को साइलेंट करें, और सिर्फ इस साइलेंस को ही एक्सपीरियंस करना है। हम करते हैं इसको, थोड़ा सा स्ट्रेट होके बैठेंगे और जस्ट फ्रीज हो जाएंगे, जैसे बैठे हैं वैसे फ्रीज हो जाएंगे, और एक मिनट के लिए सिर्फ हमें अच्छा ही सोचना है। ओम शांति। इस एक मिनट में क्या हम बस अच्छा अच्छा सोच पाए? सभी नहीं आंसर कर रहे, क्योंकि आप बहुत चार्ज्ड एनवायरनमेंट में बैठे हैं। ऐसे ही ये एक एक मिनट की प्रैक्टिस ही हमें हमारे अपने वर्क एनवायरनमेंट में, अपने घर पर ये हिम्मत देगी कि हम पॉजिटिव सोच पाए। इसीलिए हमारे यहाँ पर आप दूसरी चीज जो सीख कर जाएंगे उसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स। क्या है ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स? सारा दिन में कई बार हम अपने मन के ट्रैफिक को चेक ही नहीं करते कि हमारा मन क्या सोच रहा है। आज सुबह के सत्र में आपको बताया गया होगा कि हमारे चार तरह के थॉट्स रहते हैं, मन चार तरह के थॉट्स क्रिएट करता है। तो ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स क्या है? हर घंटे में एक मिनट हम कुछ भी कर रहे हैं, अपने आप को विड्रॉ करते हैं वहां से, अपने मन के ट्रैफिक को चेक करते हैं कि किस तरह के थॉट मन पिछले एक घंटे में सोच रहा था। अगर कोई नेगेटिव, कोई वेस्ट, कोई ऐसा ऊपर नीचे वाला थॉट था, वहीं पर उसको फुल स्टॉप लगाते हैं, फिर से कनेक्ट करते हैं परमात्मा से, री एनर्जाइज करते हैं, देन वी गो बैक टू आवर वर्क। और इस काम में 40, 50, 60 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते हैं। अगर कोई कहे कि हम बहुत बिजी हैं, आप देखिए, आप पानी पीने उठते हैं, आप वॉशरूम के लिए उठते हैं, कई बार ऐसा काम है जिसमें आपका मन नहीं यूज हो रहा है, लेकिन बीच बीच में अगर हम ये ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट करते हैं, अपने मन को चेक करते हैं, तो एंड ऑफ डे हम खुद को डिस्चार्ज नहीं फील करते। नहीं तो आप देखिए, सुबह से शाम तक भाग दौड़ की लाइफ के बाद जब हम अपने घर आते हैं, हम अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को क्या देना चाहते हैं? खुशी, शांति, शक्ति, यही देना चाहते हैं? बोल भी ऐसे ही रहे होते हैं, सुबह से शाम तक आपके लिए तो भागते हैं, बोलते हैं या नहीं, और दे क्या रहे होते हैं एक्चुअल में? आप घंटा लेट आ गए, आपकी वाइफ ने पूछ लिया आज क्या बात होगी, कैसा जवाब देते हैं? छोटी छोटी बातों पे दे क्या रहे होते हैं हम? और वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो सारा दिन काम करते 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 बैटरी कंज्यूम होते होते जब शाम को आए हैं तो डिस्चार्ज बैटरी आए हैं। ये बहुत अच्छा तरीका आप इस विद्यालय से सीख के जाएंगे कि सारा दिन बीच बीच में कनेक्ट करके खुद को हम चार्ज्ड रखें। पॉजिटिव थॉट्स की जो हम बात कर रहे थे, चैलेंजेस हम सबके साथ हैं, चाहे हमारा फील्ड घर पर रहने का हो, बाहर जॉब का हो, बिजनेस का हो, आज चैलेंजेस सबके साथ हैं। लेकिन अगर हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखते हैं तो हम उन्हीं चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हमारा एटीट्यूड ही नेगेटिव रहेगा तो हम अच्छी से अच्छी सिचुएशन को भी खराब बना सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखना है। मेरे को एक छोटी सी बात याद आ रही है। आप सबने मदन मोहन मालवीय जी का नाम सुना होगा। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ मदन मोहन मालवीय? है ना, फ्रीडम फाइटर हुए हैं, उन्होंने लिखा भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ किया है देश के लिए। तो एक बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जब निर्माण होना था तो उसके लिए फंड्स की जरूरत थी। अगर यूनिवर्सिटी बननी है तो आप सोच सकते हैं कितने फंड्स चाहिए। तो उस टाइम पर ऐसा बताते हैं कि मदन मोहन मालवीय जी हैदराबाद के निजाम के पास गए और उन्होंने ऐसा ऐसा बोला कि हम ऐसा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं और आपसे हमें धन का सहयोग चाहिए। तो जैसी उन्होंने ये वाली बात सुनी हैदराबाद के निजाम ने, उन्होंने पांव से अपनी जूती निकाली और उनके मुंह पर मारी, क्योंकि हिंदू यूनिवर्सिटी थी ना। और उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने उनकी उस जूती को कैच करके अपने साइड में रख लिया और वो बहुत कुछ बोल रहे थे। जैसी वो बोलना चुप हुए, उन्होंने वो उनकी जूती उठाई और आराम से चले गए बिना किसी रिएक्शन के। और अगले दिन चौराहे पर उन्होंने उनकी जूती को सेल पर लगा दिया, बिड करने पर, नॉट सेल पर, बिड पे लगा दिया कि हैदराबाद के निजाम की जूती। तो बहुत सारे लोग बिड करने लगे, बात फैलते फैलते निजाम तक पहुंची। उनको लगा कि ये तो मेरे लिए बहुत डिसऑनर वाली बात है। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ, जितने की भी वो मिले आप लेकर आओ उसको। और ऐसा बताते हैं, ये रियल इंसिडेंस है, ऐसा बताते हैं कि उस बिड में उनको बहुत सारा पैसा मिला था और एक अच्छा अमाउंट उनको मिला। तो आप देखिए, बात तो वही है, कोई उसको एज अ चैलेंज लेता है, कोई उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेता है। तो एक्चुअल में हमारी अप्रोच डिसाइड करती है कि हम कैसा फील करेंगे। तो ये पहली चीज है, सात्विक डाइट और पॉजिटिव थॉट्स तन के लिए और मन के लिए, जो हमारी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। दूसरी चीज है प्रॉपर रेस्ट। अगर हम रेस्ट की बात करें तो स्लीप, अगर हम स्लीप की बात करें तो क्या हमें प्रॉपर स्लीप आती है? इसका एक टेस्ट है, जब हम सुबह उठते हैं तो क्या हम फ्रेश फील करते हैं? आप में से कौन कौन से जिनको लगता है पांच मिनट और, बस पांच मिनट और, थैंक यू, ऐसा क्यों लगता है? आप सोचिए, जो नींद पिछले पांच छह सात घंटों में नहीं पूरी हुई, क्या पांच मिनट में पूरी हो जाएगी? क्या साइकोलॉजी है हमारी? ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है। पांच पांच मिनट स्नूज करते रहते हैं फिर हम। यहां पर इस विद्यालय में ये भी बात सिखाई जाती है कि हमारी आर्ट्स ऑफ स्लीप मैटर नहीं करता है, क्वालिटी ऑफ स्लीप मैटर करती है। क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। और इस विद्यालय में हमारे बड़े दादी जो थे, प्रकाशमणि दादी, हमारे फॉर्मर चीफ, वो एक बड़ी सुंदर बात बोला करते थे, रात में 10 मतलब बस। और आइडल टाइम है ये सोने का, रात के 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक, मैक्सिमम, ये आइडल टाइम है। साइंटिफिकली भी ये चीज प्रूव्ड है कि इस टाइम पे जो हमारी स्लीप है वो बेस्ट स्लीप होती है। जितना हम उसको डिले करते हैं 10 से 11, 12, उतना हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता जाता है। ये आइडल स्लीप है। और यहाँ के भाई बहनों का तो यही रूटीन है, रादर 10 से 3, 4 भी नहीं, 10 से 3, 3:30 उठ जाते हैं सभी। और उठने के बाद फिर हम मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा से अपने आप को चार्ज करते हैं, जो आज आपने बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग वाले सत्र में एक्सपीरियंस किया होगा। एक्चुअल में उठने की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है टाइम पर सोने की। अगर आप टाइम पर सोते हैं तो आप टाइम पर उठ भी पाएंगे। दूसरी चीज, सोने से पहले एक काम हम सबको करना है, चाहे हम कितने बजे भी सो रहे हैं, इसको खाली करके सोना है। और इसको खाली करने का एक सिंपल तरीका है, राइट अ लेटर टू गॉड। कई बार आप इतने टायर्ड हैं कि आपका लिखने का दिल नहीं कर रहा है। अच्छा, लिखने का दिल नहीं है, उसको सुनाकर सोए। आज जो भी सारा दिन में आपने किया, उसका सार, उसका क्रक्स, जस्ट 5 मिनट में उसको सुनाकर सोए। यहां कैरी करके नहीं सोए, खाली करके सोए अपने मन को, तो आप देखेंगे आपको बेहतर नींद आएगी। कम घंटों में आप एनर्जेटिक फील करेंगे। दूसरा लाइफस्टाइल चेंज, हमें सोने के लिए क्या करना है, हम मैक्सिमम लोग अपने रूटीन को चेक करें। सोने से पहले, इमीडिएट पहले हम क्या कर रहे होते हैं, मोस्टली लोग स्क्रीन पर होते हैं, राइट? एग्री करते हैं, करते हैं ना। साइंस ऐसा बताती है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो क्रिएटिव है, इंट्यूटिव है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स वर्क करता है, इवन व्हाइल वी आर स्लीपिंग। कॉन्शियस माइंड हमारा सिर्फ तब तक एक्टिवेटेड है जब तक हम जागृत अवस्था में, बट सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स वर्क करता है। और वो लैंग्वेज ये सब नहीं समझता है, वो सिर्फ पिक्चर्स, म्यूजिक, रिदम्स, इन चीज को अंडरस्टैंड करता है। अब जब आप स्क्रीन पर थे तो जो कुछ भी आपने देखा या फिर कुछ ऐसा पढ़ रहे थे जो इररिलेवेंट है हमारे, उससे तो उसने आपके माइंड में बहुत सारी इमेजेस दी। अब उसके बाद आप थके हुए थे, आपको लगा कि आप सो जाएंगे, नींद आ जाएगी, और हो सकता है आपको लगा कि नींद आ भी गई। कॉन्शियस माइंड सो गया, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को तो आपने बहुत सारा काम दे दिया ना, बहुत सारी इमेजेस दी। सबकॉन्शियस माइंड तो पूरी रात उस पर काम कर रहा था, सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोया। फिर सुबह उठकर 6-7-8 घंटे के बाद भी क्या लग रहा है, 5 मिनट और, मन फ्रेश नहीं है। ऐसा कब से चल रहा है, कब से चल रहा है? आप सोचो, किसी मशीनरी को रेस्ट ही ना मिले कभी, क्या होगा उसका, क्या होगा? आज हम सभी नॉर्मली ये वाली बात करते हैं ना, बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी है, गुस्सा तो आ ही जाता है। क्यों ऐसा है, क्या ये हमारा नेचुरल नेचर है? है, इज इट नॉर्मल? जब हम गुस्सा कर रहे हैं, जब हम स्ट्रेस फील कर रहे हैं, क्या वो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है? जब किसी मशीनरी को भगाते रहेंगे तो क्या वो स्ट्रेस में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। आप सोचिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को तो हमने कब से रेस्ट दिया ही नहीं है, दिया ही नहीं है। इसीलिए अपने ऊपर रहम करें, सोने से एक घंटा पहले ये अपने जीवन का नियम बनाएं। ये लाइफस्टाइल चेंजेस, अगर हम अपनी लाइफ को क्वालिटी लाइफ बनाना चाहते हैं, इफ वी वांट टू लिव अ हेल्दियर लाइफ, तो ये नियम हमें बनाने पड़ेंगे। सोने से एक घंटा पहले सारे गैजेट्स अपने से दूर कर दें, नहीं तो वही सब कंज्यूम करके सो रहे हैं सारी रात, उस पर काम कर रहा है, सुबह उठ के कैसे फ्रेश फील करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए प्रॉपर स्लीप, कम घंटों में आप अच्छा सो पाएंगे जब रात को परमात्मा को अपना सब कुछ देकर उससे शक्ति लेकर उसकी याद में सोएंगे। कहते हैं ना, मन की जो लास्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वही सुबह उठकर फर्स्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। आपने इसको बहुत बार प्रैक्टिकल किया भी होगा, आप किसी के बारे में सोच के सोए हैं, सुबह उठते ही आप उनको याद कर रहे होते हैं। कोई इंसिडेंस को आप याद करके सोए हैं, आप सुबह उठते उसी इंसिडेंस को याद कर रहे होते हैं, क्योंकि जो लास्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन है रात में वही हमारी सुबह की फर्स्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो रात को अपने मन को परमात्मा की याद में सुलाएं, अपने आप को अच्छे थॉट्स दे के सोएं। मैं भाग्यशाली आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, ऐसे ऐसे थॉट्स दे के सोएं। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, परमात्मा मेरा साथी है, अच्छे अच्छे संकल्प अपने आप को देके सोएंगे तो सुबह उठकर भी मन में वही थॉट्स आपके आएंगे। तो ये रही शरीर की नींद की बात, ऐसे ही मन की नींद, मन का रेस्ट जो है वो है साइलेंस। सारा दिन में कुछ टाइम साइलेंस की प्रैक्टिस जरूर करें। साइलेंस मीन्स साइलेंस, फिर उस टाइम पर फिर कुछ भी नहीं करना, और कोई वो लंबी लंबी प्रैक्टिस नहीं है, बीच बीच में 30-30 सेकेंड्स भी। वो क्यों करना है? क्योंकि साइलेंट माइंड ही ईश्वरीय शक्तियों को ग्रहण कर सकता है, साइलेंट मन ही सॉल्यूशंस पर काम कर सकता है। आपने बहुतों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा, आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज गुम हो गई, नहीं मिल रही है, आप उसको कई जगह ढूंढ रहे हैं, कहते पागलों की तरह ढूंढ लिया नहीं मिल रही, कोई कहता आप छोड़ दो बाद में आके देखना, दो घंटे बाद आके देखते हैं या अगले दिन आके देखते हैं, तो आपको ऐसे लगता है जैसे सामने किसी ने रख दिया है। किया एक्सपीरियंस? क्योंकि जब मन में क्योज है तो बाहर भी क्योज है, और जब मन साइलेंट है तो आप सॉल्यूशंस पर देख पाते हैं। तो ये है मन के लिए, बीच बीच में मन को साइलेंट करें। तीसरी चीज है एक्सरसाइज। हम सभी जानते हैं फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कुछ है, आज कोई योगा करता है, कोई वॉकिंग करता है, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आप अपने तन के लिए अवश्य करें। और मन के लिए जो एक्सरसाइज है वो है मेडिटेशन, जो आप 3 दिनों में यहां पर बहुत अच्छे से सीखेंगे ही, और हर सत्र में भी एंड में आप उसको प्रैक्टिस करेंगे ही। यहां पर मेडिटेशन को अगर हम सिंपल बोलें तो मेडिटेशन वर्ड ही मेड्री वर्ड से निकला है, एंड मेड्री इज अ लेटिन वर्ड विच मीन्स टू हील। किसकी हीलिंग? मन की हीलिंग। और मेडिटेशन सिंपल वो प्रोसेस है जिसमें परमात्मा से कनेक्ट करके हम फिर से अपने आप को भरते हैं। किससे? जो हम सबका नेचुरल नेचर है, जो हमारी बेसिक कोर वैल्यूज हैं, पीस, लव, हैप्पीनेस, जो 7 वैल्यूज आज सुबह के सत्र में आपने सीखी होंगी। तो ये सिंपल प्रोसेस है। एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम किसी बॉडी ऑर्गन का अगर ठीक नहीं काम कर रहा है, जैसे दीदी ने भी बोला कि अगर बुखार है तो हम सारा दिन क्या बोलते रहते हैं, मुझे बुखार है, मुझे बुखार है, दिन में से कितनी बार रिपीट करते हैं। किसी की नी पेन है, कोड़ा बहुत दुखता है, कोड़ा बहुत दुखता है, 10 लोगों को बताएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो आप रिपीटेडली बार बार बोलते हैं ना, आप उस चीज को एनर्जी देते हैं, वो चीज होनी शुरू हो जाती है। तो आज से अपने शरीर को ब्लेसिंग देना शुरू करें। जिसका जो ऑर्गन, जो पार्ट ठीक नहीं है, उसको स्पेशल बैठ के उसको ब्लेसिंग दें, है ना। सपोज किसी का हेडेक रहता है तो अपने हेड को ब्लेसिंग दे, आप कितने अच्छे हो, आपने इतने साल मेरा साथ निभाया, हमेशा आप मेरी मदद करते हो, मुझे पता है अभी भी आप मेरी मदद करोगे। क्योंकि जो कुछ करना है किससे करना है? शरीर के थ्रू तो करना है ना, आत्मा में। आपका कोई साथी भी होता है जो आपका राइट हैंड होता है, जो आपके सारे काम करता है, आप उसको भी कितना ज्यादा अप्रिशिएट करते हो, उसको आगे बढ़ाते हो। ये शरीर तो सारा दिन रात हमारा साथ देता है, तो इसको बैठ के इसको बहुत अच्छे अच्छी बातें इसको करनी है, इसको ब्लेसिंग्स देनी है, शरीर को दुआएं देनी है। आप देखना शरीर आपकी सुनेगा या आपका साथ देना शुरू करेगा। तो जो भी ऑर्गन ऐसा है इसको आपने ब्लेसिंग्स देनी है, स्पेशल टाइम निकाल के भी ब्लेसिंग दे, इट रियली वर्क्स। और लास्ट चीज, हम छोटी छोटी बातों में बहुत क्रिप करते रहते हैं, ये एक बेसिक नेचर बन गया है, जजमेंटल होके देखना, क्रिटिसाइज होकर बात करना। अगर किसी चीज में बहुत अच्छाई है उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रिटिकल बात हम देख ही लेते हैं। तो आज से ये अपने जीवन का मंत्र बनाएं कि किसी के लिए कोई भी क्रिटिकल और जजमेंटल थॉट नहीं क्रिएट करना है, कोई भी क्रिटिकल और जजमेंटल थॉट नहीं। क्यों? उसका रीजन है, क्योंकि कौन किस परिस्थिति से गुजर रहा है शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर हम एक टीम में काम कर रहे हैं, हम किसी बिजनेस में हैं, हमारे अंडर जो काम कर रहे हैं या जो भी हमारी टीम है, किसी के घर में कोई ऐसा व्यक्ति बीमार है, आप सोच के नहीं सोच सकते हैं, किसी का हो सकता है घर में डिवोर्स केस चल रहा है, किसी की कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, बहुत प्रॉब्लम से लोग आ रहे हैं, आज किसी की भी लाइफ नॉर्मल नहीं है, कोई ऐसा क्यों है उसके पीछे हजार रीजन है। जब तक हमें रीजन नहीं पता, हम किसी के लिए क्रिटिकल और जजमेंटल होने का हमें अधिकार ही नहीं है। इसीलिए आज से गांठ बांध के जाएं, किसी के लिए भी हम क्रिटिकल जजमेंटल नहीं होंगे, लेकिन हरेक को ब्लेसिंग्स देंगे। ब्लेसिंग्स आत्मा के लिए टॉनिक का काम करती हैं। शरीर के लिए टॉनिक लेते हैं ना, जब कमजोरी फील करते हैं डॉक्टर को क्या बोलते हैं, थोड़ी सी ना कमजोरी हो रही है, आप कोई टॉनिक लिख दीजिए, और कुछ नहीं तो B12 के इंजेक्शन ही लगवा लेते हैं लोग आजकल। ये मन के लिए टॉनिक है, आत्मा के लिए टॉनिक है ब्लेसिंग्स। हर चीज में वाह वाह करें, सबको वाह। अभी करें इसको लास्ट में जस्ट एक मिनट, क्योंकि यहां करा हुआ ना आपको याद रहेगा, स्मृति में रहेगा, तो घर जाके कर पाएंगे। सबसे पहले अपने लिए करें, वाह मैं, बोले सभी। फिर अपने भाग्य के लिए करें, वाह मेरा भाग्य वाह। फिर अपने परिवार वालों के लिए करें, वाह मेरा परिवार वाह। अगर किसी की पर्टिकुलर संबंध में नहीं बनती है ना, उनके लिए तो जरूर ब्लेसिंग्स देनी है, है ना, वाह मेरी वाइफ वाह वाह। ये तो चलो इधर नहीं तो अपने घर में जरूर करना है आपको, जिस पर्टिकुलर संबंध से नहीं बनती है उनके लिए करना है, वाह हमारा वातावरण वाह। और लास्ट में उस परमात्मा के लिए, वाह ऑलमाइटी वाह वाह। और एक बार जस्ट 30 सेकेंड्स मन में वो सारी बातें लेकर आए जो भगवान से हमें मिली हैं, अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा प्रोफेशन, अच्छी सेहत, उन सब के लिए भगवान का मन ही मन में शुक्रिया करें। ओम शांति।
हमने बहुत सारे वाह वाह किए, क्या हम उसमें एक वाह और जोड़ सकते हैं? जोड़ेंगे, कौन सा? समझ गए ना सब, बोलिए। वाह हमारी नेहा बहन, ऐसे नहीं, वाह नेहा बहन, वाह हमारी नेहा बहन वाह, बोलिए सब। कितना शांति से, कितना प्रेम से धीरे धीरे आपने बहुत सारी बातें सुना दी जो हमेशा हमें याद रहेंगी। एक छोटी सी बात, पत्नी की तबीयत खराब है और मोबाइल खराब है, पहले रिपेयरिंग किसका होगा? सोचिए हमारा मन कहाँ चला गया है। माना परिवार का, जहां हमारा परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम होना चाहिए, उसके बदले में हमने मोबाइल को वो जगह दे दी है। इसलिए मोबाइल अच्छी क्वालिटी के निकलते जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, परिवार के साथ जो प्रेम की क्वालिटी होनी चाहिए वो डाउन होती जा रही है। तो ये सब बातें हमें बहुत सारी यहाँ सीखने को मिलेंगी। हम फिर से हमारी प्यारी नेहा बहन का तालियों के साथ उनका आभार व्यक्त करेंगे। अब मैं निमंत्रण देती हूँ हमारी प्रियंका बेंडामोर। आप बीएससी बॉटनी और एमबीए फाइनेंस किया है। आपने सन 1999 में ONGC में फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर से अपनी कैरियर की शुरुआत की। अभी DGM के पद पर अपना कार्यभार आप संभाल रहे हैं मेहसाणा में। तो अब मैं निमंत्रण देती हूँ हमारी प्रियंका बहन को।
मेरा नाम प्रियंका डामोर है और मैं इस कॉन्फ्रेंस में विशेष अहमदाबाद से आई हूँ। ये दोबारा मुझे आने का चांस मिला है। और मेरे परिवार में चार सदस्य हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दो बच्चे हैं। और प्रेजेंटली मैं ONGC महसाना में एज ए DGM फाइनेंस एंड अकाउंट्स पोस्टेड हूँ। मेरे हस्बैंड भी ONGC में है, GM प्रोडक्शन है। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, यस, वो जो भारत में ऑयल का उत्पादन करती है, मेन नंबर वन कंपनी है। तो हाँ जी, तो मुझे एक्सपीरियंस सुनाने के लिए कहा गया था कि ज्ञान में आने के बाद, यानी कि ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया, मेरी हेल्थ में क्या चेंजेस आए, तो मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। ब्रह्मा कुमारी संस्था से मैं 2017 में जुड़ी, और जुड़ने का कारण भी बहुत ही अलग है, क्योंकि सब लोग कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी हमें जानना था, ज्ञान की खोज थी, तो इसलिए हम आए। लेकिन नहीं, मेरे जीवन तो थोड़ा कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। था सब कुछ, अच्छी जॉब थी, अच्छा परिवार था, और सब सुविधाएं जो आजकल हम चाहते हैं, सुख सुविधा सब था, लेकिन जीवन में थोड़ा सा कुछ खालीपन था, अशांति थी, दुख भी था। क्यों? क्योंकि मेरा स्वभाव ठीक नहीं था, गुस्से वाला था, या फिर नाराज हो जाती थी, किसी ने कुछ कहा तो दुखी हो जाना, नाराज हो जाना किसी के ऊपर, मतलब कुछ भी जीवन में परिस्थिति आ रही है तो दूसरों के ऊपर ब्लेम कर देना कि नहीं इसकी वजह से ये हुआ है। तो इस तरह से रोते रोते सारा काम और दुखी होते होते करना मेरी आदत हो गई थी। तो मैं हमेशा जब भी दुख आता था तो भगवान को याद करती थी कि हे भगवान आप कहाँ हो, सारा दुख मुझे ही दिया है क्या ऐसे। तो एक बार 2015 में यही सब, मेरी एक फ्रेंड का फोन आया तो मैं उसको सुना रही थी कि मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं सबको डांट देती हूँ, ऑफिस में भी मतलब काम तो हो रहा है लेकिन वो खुशी नहीं मिल रही थी। तो उसने बोला, एक बात मुझे बोली कि प्रियंका तुम सिस्टर शिवानी के एपिसोड्स देखो तो तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। एक लाइन उसने बोली, और उसने मुझे कुछ सीरीज के नाम बताए कि बीइंग ब्लिस, हैप्पीनेस अनलिमिटेड, ये एक सीरीज चल रही थी उस समय, तो एपिसोड्स देखो उसके। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने वो फिर ऑफिस में काम करते करते, घर में काम करते करते देखना चालू किया, सुनना चालू किया, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो फिर एक और उनका सीरीज चल रहा था, गॉड्स रिविलेशन, उसमें कुछ 32 एपिसोड थे, वो मैंने सारे देखे। तो उसमें सिस्टर शिवानी बहन ने कहा कि वो डिवाइन एनर्जी, वो परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं, क्या आप उनसे मिलना नहीं चाहेंगे? तो मुझे तो वो बात क्लिक कर गई, टच हो गई, क्योंकि मैं तो दुखी होती थी तो भगवान को ही याद करती थी। तो फिर मैंने निश्चय कर लिया कि मैं सेंटर जाऊंगी, 7 दिन का राजयोगा मेडिटेशन कोर्स सीखूंगी। और मैंने ज्वाइन किया सेंटर, कोर्स सीखा, और उस दिन से लेकर आज लगभग 6 साल हो गए, मेरा जीवन बिल्कुल ही परिवर्तन हो गया है। अभी और होना बाकी है, लेकिन बहुत ही काफी परिवर्तन हो गया है। अब मैं ये गर्व से कह सकती हूं कि मैं धन तो कमाती हूं अपने परिवार के लिए, लेकिन अभी मैं शक्ति भी कमाती हूं और खुशी भी कमाती हूं अपने परिवार के लिए। हाँ, शक्ति कमाने के लिए मेरे पास मतलब टाइम का थोड़ा रहता है, कि क्योंकि मैं अहमदाबाद से मेहसाणा डेली अप डाउन करती हूं, तो डेली सेंटर नहीं जा पाती, लेकिन सैटरडे संडे मेरे पास छुट्टी होती है, तो मैं सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक सेंटर में मुरली सुनती हूँ, सेवाएं प्रदान करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। तो उससे मेरे अंदर इतना बल और शक्ति भरती है, और वो ही जाके मैं अपने परिवार, ऑफिस में सबको बांटती हूँ। अब रहा जो हमारा टॉपिक है, हेल्थ थ्रू हील द लाइफस्टाइल, तो उसमें मैंने कैसे बदलाव लाया अपने हेल्थ में। तो जैसे दीदी ने बताया, नेहा दीदी ने, कि जैसे शरीर के लिए आपको रेस्ट चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए और अच्छा डाइट चाहिए, तो वैसे मन के लिए भी रेस्ट, एक्सरसाइज और डाइट चाहिए। पहले तो हम सोचते थे कि हेल्थ यानी खाली फिजिकल हेल्थ, शरीर में कुछ हुआ तो डॉक्टर के पास चले गए, पता नहीं था कि मन का असर तन पे पड़ता है। ये बात ज्ञान में आने के बाद पता चली कि हमारा सारे डिसीज साइकोसोमेटिक होते हैं, पहले साइकोलॉजी यानी हमारे मन पे आते हैं और फिर वो बॉडी पे मैनिफेस्ट होते हैं। तो ये कारण जब मुझे पता चल गया कि चलो मन के ऊपर वर्क करना है, मन को ठीक करना है, तो मैंने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना चालू किया। तो सबसे पहले मन को एक्सरसाइज देने के लिए दीदी ने जैसे बताया, मैंने मेडिटेशन का प्रैक्टिस चालू किया, सुबह 4 बजे उठना चालू किया और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के अपने आप को भरा, जैसे हम अपना मोबाइल चार्ज करते वैसे मैंने अपनी आत्मा को चार्ज किया, डेली शक्ति और शांति से भरा। और 7 बजे जो मुरली क्लास हमारी चलती है, तो मन के लिए सबसे अच्छा डाइट तो वही हो सकता है कि परमात्मा के महावाक्य सुनो, तो मैंने अच्छा डाइट देना चालू किया मन को। और फिर दिन में हर 1 घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल चेक किया कि मेरे थॉट्स किस क्वालिटी के हैं, अगर नेगेटिव है तो उसको चेंज करके पॉजिटिव में लाया। और रात को सोने से पहले मैंने अपना मन साफ करके सोने का एक प्रैक्टिस किया कि दिन में जो भी हुआ है, मैंने किसी को गलती से डांट दिया या किसी ने मुझे बुरा बोल दिया, तो वो सब सफाई करके कि उसको माफ कर दो और उससे माफी मांग लो। तो ये छोटा सा मैंने एक लाइफस्टाइल में चेंजेस लाया और उसके परिणाम बहुत ही अच्छे मिले। रोज मैं शक्ति और खुशी से भर के अपने आप को सुबह कारोबार में जाती हूँ, परिवार के बीच रहती हूँ, तो वही रेडिएट करती हूँ। तो जो मेरा स्वभाव था गुस्से वाला, वो भी एकदम शांत हो गया, व्यर्थ संकल्प चलते थे वो भी खत्म हो गए, और शांति तो ऑब्वियसली आई गई क्योंकि रोज अपने आप को, मन को ट्रेन कर रहे थे हम। तो यही चीज फिर मेरे बॉडी पे भी इसका असर पड़ा, वैसे बीमारी तो कोई थी नहीं, लेकिन एफिशिएंसी बढ़ गई मेरी काम करने में, क्योंकि मेरा टाइम सेव होने लगा। पहले तो कुछ मतलब इधर उधर भटक रहे थे कि यहां मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा, लेकिन पता चला अंदर ही है सब कुछ। तो टाइम सेव हुआ, एफिशिएंसी बढ़ी, और रिश्तों की वैल्यू समझ में आई, ब्लेम गेम्स बंद हो गया क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पर ले ली, तो इससे मेरे रिश्ते सुंदर हो गए। और बस यही एक परिवर्तन जो आया मेरे जीवन में। और एक जो मिरेकल है जो मेडिटेशन से मुझे मिला, कि जो मेरा बड़ा बेटा है अभी तो 22 साल का है, उसको 2.5 साल से एपिलेप्सी मतलब मिर्गी का अटैक आता है, तो उसका जब भी ईईजी का रिपोर्ट हम कराते थे तो ठीक नहीं आता था, लेकिन पिछले 2 साल से मतलब 2022-21 में 2 बार कराया, रिपोर्ट एकदम नॉर्मल और एकदम परफेक्ट। तो ये तो मेडिटेशन का ही कमाल है, बस मुझे इतना ही कहना है। और मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी भी 7 दिन का राजयोगा मेडिटेशन कोर्स जरूर सीखें और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएं। शुक्रिया। ओम शांति।
बहुत अच्छा। प्रियंका बहन ने भी बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। हम जब किसी के पास जाते हैं कुछ ज्ञान की बातें सुनाते हैं, जैसे हमारी नेहा बहन ने ज्ञान की बातें सुनाई, तो कई बार कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आप तो आश्रम में समर्पित हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। तो आपके पास समर्पित बहन उन के द्वारा भी आपने ज्ञान तो सुना, लेकिन प्रियंका बहन तो घर गृहस्थ में रहते हैं। सिर्फ घर गृहस्थ ही नहीं, वो सर्विस भी करते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं। तो घर गृहस्थ, नौकरी और आध्यात्मिकता, वैसे देखा जाए तो थोड़ा ये कठिन है, शुरुआत इसकी कठिन है, लेकिन एक बार जब हम शुरुआत कर लेते हैं तो हमें ज्ञान से और योग से इतना फायदा होता है कि हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता जाता है। जैसे कल सुबह का शुरुआत में बताया, सेशन 6:30 से 8 बजे का है, उसमें बहुत अच्छी बातें आपको जानने सुनने के लिए मिलेंगी, और साथ ही साथ उस समय आपको मेडिटेशन भी कराया जाएगा। परमात्मा कौन है, मेडिटेशन कैसे करें, उनको याद कैसे करें, इसलिए वो आप जरूर सुनेंगे। तो हम एक बार प्रियंका बहन के लिए तालियां बजा के उनका आभार व्यक्त करेंगे। अभी आज की सभा के चेयरपर्सन हैं डॉक्टर डी रविशंकर जी। आप डॉक्टर डी रविशंकर अभी होकड़ो न्यू दिल्ली में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। होकड़ो में 33 साल से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इससे पहले आप मैसूर यूनिवर्सिटी में एनवायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोफेसर के पद पर सेवाएं दी थी। आपने एमटेक एमबीए किया है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषय पर पीएचडी भी की है। तो हम डॉक्टर रविशंकर जी का सबसे पहले तालियों से उनका स्वागत करेंगे कि आप यहाँ पधारे हैं। तो आप अपना बहुत अच्छा अनुभव सुनाएंगे डॉक्टर डी रविशंकर जी।
ओम शांति। मेरा नाम रविशंकर है। बेसिकली आई एम एन एनवायरमेंटल इंजीनियर। फिर इंजीनियरिंग जब पढ़ाई कराता था कॉलेज में, मेरे को लगा जो मैं टीच कर रहा हूँ सिर्फ वो बुकिश लैंग्वेज है, मेरे को खुद एक्सपीरियंस नहीं है। सो इसलिए ऐसा लगा आई शुड गेट द एक्सपीरियंस आउटसाइड। सो जब हुडको ज्वाइन किया, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सो वहाँ फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा था मकान बनाने के लिए या एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। सो इस सिलसिले में मेरे को कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट में काम करने का अवसर मिला, केरल में, महाराष्ट्र में, झारखंड स्टेट में, कर्नाटक में, अभी दिल्ली में, ऐसे ही। सर जब फाइनेंस करना चालू कर लिया, मेरे को लगा प्रोजेक्ट फाइनेंस इज नॉट जस्ट डिपेंड ऑन द मनी, इट डिपेंड्स ऑन द नॉट ओनली टेक्निकलिटी, फाइनेंशियल वायबिलिटी एंड लीगल एलिजिबिलिटी, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। मतलब ये है, इफ द लीडरशिप ऑफ दैट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटर्स आर गुड, इफ दे आर हॉनेस्ट इन देयर वर्क एंड इफ देयर कॉन्शियस इज क्लियर, यू कैन इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट विद द लोअर कॉस्ट विदाउट एनी कॉस्ट ओवररन एंड टाइम ओवररन। ये सोच सोच के जब मैं कर रहा था, तो मेरा एक प्रोफेसर ने बोला कोई आंसर नहीं है, आपको कुछ करना है तो पीएचडी कर लीजिए। सो आई रजिस्टर्ड फॉर द पीएचडी एंड वर्कड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कहने ये है, डेवलपमेंट नॉट ओनली फॉर द करंट जनरेशन बट द जनरेशन टू कम। जब हम लोग अपना करंट जनरेशन के लिए ख्याल नहीं रख पा रहे, हाउ कैन यू कीप द विजन फॉर द जनरेशन टू कम, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो जब मैं स्टडी करना चालू कर लिया, सो आई रिलेटेड द रोल ऑफ इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट एंड एथिक्स। मतलब डेवलपमेंट को आप सिर्फ इकोनॉमिक्स में फोकस करेगा, यू विल ग्रो मीन्स यू मेक मनी, But if you don't take care of the environment, that development will start collapsing. If you take care of the environment and also the money, that is economics, it will go further and start collapsing if the ethics are not good. Means the society is not taking care of the morals and ethics in that sector. On the contrary, micro level pe aap sochega to, if you make money without taking care of your health, so aapka paas paisa hoga, but aapka health kharab ho jayega, to you can't enjoy that life, right? This is economics and environment. As an environmental engineer, we made impact assessment and all found that the cost of environmental degradation and economic collapse. So next stage ye hai, if you want to see the external environment is good, your inner environment should be better. That means to say, paisa hai, aapka paas achha makan hai, car hai, bistar hai, bed hai, sab hai, but man ke andar clarity nahi hoga. If you are not dishonest in your life, you are not respected by your own children, own family members, friends and relatives. So jitna bhi paisa hoga, wo enjoy nahi kar payenge. So this I found in my work at various places, and I related this economics, environment, ethics for sustainable development. So isliye mere ko spiritual issues mein thoda sa man aaya. So then I was discussing with my colleagues, friends, and then elders. You can see great leaders who have achieved certain things in life, like Mahatma Gandhi, APJ Kalam, and Narayan Murthy and Sudha Murthy, who are founder of Infosys. Even Pradhan Mantri Abhi, Narendra Modi ji, un sabka internal requirement hai na, egoistic needs are less. They are more working towards the upliftment of the soul. Tab jab hoga, aapka material requirement kam hoga. Jab material requirement kam hoga, jo material resources available externally, that would be allowed for the others to enjoy. So that hamara requirement kam hoga. If you look at the total GDP in the world, more than 60% of the consumption, what is happening is non-utilitarian consumption. Matlab usko consume nahi karega to bhi chalta hai, but phir bhi hum log usko consume karte hai, GDP increase hota hai. In a micro level, if you want to say that, pehle bachcho logon ko elders dekhta tha, dekhpal kar raha tha, aur elders used to take care of the youngsters, and middle wala jo bhi hai wo kaam karta tha. Abhi we send them to the elders home, bachcho logon ko kindergarten mein bhejta hai, GDP increase ho raha hai, but happiness increase nahi ho raha hai. So this is what I found when I went to US to present my PhD paper. I found all the negatives of America, like their consumption pattern. They have put food on the table, more than 70% of the food they have put into the trash bin. Whereas if you see here in this ashram, you can see 95% of the food is eaten, only 5% is wasted. So ye jo hamara paas ye jo culture hai na, ye culture seek rahe hai now the Western world. So I found some of my friends who are working in the Columbia University. They said that, Ravi Shankar, we started new courses in our university. I asked them, what are that courses? The course is MS Adaptation and MS in Change Management. So their research now is how India can able to manage 130, 140 crores of people with so much resources, whereas America with so much resources, they are unable to handle them in a right perspective. So America, in that way, if you start eating or if you start consuming the way America is consuming, the entire world resources get exhausted within 10 to 15 years. So the good part of the story is that for sustainable development, yes, there are two aspects. One is external resources management efficiently and effectively, that is with science, technology, management, economics and all, which we learn from the classroom. Whereas inner management, how do we utilize our own energy, physical energy, mental energy, emotional energy, intellectual energy and spiritual energy effectively. whoever learns how to utilize their own energy effectively and efficiently, I feel they will be more richer person without having much of material resources also. So I found, try to implement these things in our office. I found some of the people are having a lot of medical bills. And I found that why medical bill is, because he has been put in a job which he is not liking or which his ego is not taking care of it. So we have shuffled the places and we have given the job which he likes very well. So based on that, I found that the medical bill has reduced to an extent of around 60%. So matlab ye hai, hum logon ko apna jo kaam maja aata hai, matlab enjoy kar sakte hai, swadharm ke saath jo kaam karna chalu karenge, health apne apne improve ho jata hai and we start feeling happy. I am really happy for giving this opportunity to be in this, and we found that madam ne already bata chuka hai already health ka diet, rest and exercise karne ke liye, but diet and exercise ke saath saath so man ko thoda adjust kar lenge apna swadharm ke saath saath, so hamara health improve ho jayega. Recently one of the major surgeon from Mumbai said very clearly that most of the diseases like migraine, back pain, etc. are mainly because of the identification ourselves with those diseases, and it's a psychosomatic disease. For that Einstein said long back, you can't solve the problem with the same mind that created it. So humne mind mein create kar chuka hai wo ye disease hai karke, so we have to go beyond that. So that's where actually they said, for example, niche kuch traffic hai wo dekh nahi payenge, usko thoda sa upar level pe jayega to we can see the world, we can see the traffic or see those places in a more, with more clarity. Similarly, hum khud spiritual knowledge ke hisab se soul is different from body karke jab hum samajh lete hai, so we unclutch ourselves from this attachment. Jab attachment se clarity ho jayega, I feel the health will become clear on its own. I think madam has given our experience with respect to the Raj Yoga and the Brahma Kumari's teachings and knowledge base. I hope with this we all learn how to utilize effectively our own internal energy with spiritual knowledge, and also enjoy the external resources with our science and technological knowledge. Thank you. Thank you so much.
बहुत सुंदर. एक बार हम हमारे माननीय भ्राता रविशंकर जी के लिए फिर से तालियों के द्वारा उनका आभार व्यक्त करेंगे. हम आशा रखते हैं कि आप सब जहां जहां से आए हैं, हर जगह हमारे ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र हैं, आप जानते ही होंगे. आप दूसरे साल फिर से यही इंजीनियरिंग प्रभाग की जब कॉन्फ्रेंस होगी, तब तक ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में नियमित रूप से जाएंगे और दूसरे साल यहां आकर के आप भी अपना अनुभव सुनाएंगे. ठीक लगी बात आप सबको? अभी हम मेडिटेशन अर्थात राजयोग का अभ्यास करेंगे थोड़ी मिनट के लिए. सहज बैठक बना लेंगे. मन को शांत करें. लंबी लंबी सांसें लें. एक संकल्प करें. मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा हूँ। जैसे आकाश में सितारे चमकते हैं, ऐसे भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ मैं सितारा हूँ। मुझ आत्मा का निजी गुण शांति है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों का राजा हूँ। मैं आत्मा प्रकृति के पांच तत्वों पर विजय प्राप्त करने वाली एक चेतन शक्ति हूँ। अब मैं आत्मा मन और बुद्धि के द्वारा ऊपर सूर्य चांद सितारों से भी ऊपर ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी और शंकरपुरी से भी पार परलोक अथवा परम धाम की यात्रा कर रही हूँ। अब मैं आत्मा परम धाम ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा के सानिध्य में पहुंच चुकी हूँ। परम ज्योत परम पिता परमात्मा और मैं आत्म ज्योत परमात्मा की याद से मेरी आत्मा रूपी बैटरी की चार्जिंग हो रही है। परमात्मा शांति के सागर हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। परम पिता परमात्मा आप आनंद के सागर हैं। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा की याद से मैं आत्मा पावन पवित्र बनती जा रही हूँ। और मुझ आत्मा का औरा पावरफुल बनता जा रहा है। अब मुझ आत्मा का औरा दूर दूर तक फैल रहा है। मैं आत्मा परमात्मा सुरक्षा कवच के अंदर बिल्कुल सलामत और स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं तंदुरुस्त आत्मा हूँ। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा परमात्मा शक्ति और वरदानों से भरपूर बनकर वापस इस साकार दुनिया में आ रही हूँ। अब मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। मेरी चारों ओर शांति शांति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। 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 ओम शांति, ओम शांति। अभी हमारी आज की सभा के चेयरपर्सन माननीय भ्राता डी रवि शंकर जी को ईश्वरीय सौगात उनको अर्पण करते हैं, जो हमेशा के लिए उनको याद रहे कि ये परमात्मा के घर की यादगार सौगात है। मंचस्थ सभी मेहमानों का हम बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आप सब फिर से बेहद परमात्मा के घर में आते रहें, यहाँ से आध्यात्मिक लाभ लेते भी रहें और हमें देते भी रहें। इसलिए हम सभी मेहमानों के लिए और आप सबके लिए भी अंत में तालियां बजा के सबका आभार व्यक्त करेंगे। अब एक मिनट हम परमात्मा को याद करके आज का कार्यक्रम यहाँ पूरा करेंगे।